पृष्ठ संख्या एक, अध्याय एक, संगीत और तबला। सांगम गीतम इति संगीतम, अर्थात गीत और उसके अंग अथवा तदनुसंगिक कला मिलकर संगीत बनता है। गीत यानि काव्य प्लस स्वर प्लस लय। कभी कभी अभिनय भी गीत में अंतर्भूत रहता है, इसीलिए गायन, वादन एवं नृत्य इन तीनों कलाओं का स्वतंत्र या एकत्रित रूप में किया गया प्रस्तुतिकरण ही संगीत है। इसीलिए किसी भाष्यकार ने संगीत का वर्णन यूं किया है, गीतम वाद्यम च नृत्यम च त्रयम संगीतम उच्यते। संगीत में गीत महत्वपूर्ण है। गीत का मतलब है मनोरंजक स्वर रचना, प्राप्त काव्य। भाष्यकार कहते हैं रंजक स्वर संदर्भो गीतम इत्यभिधीयते। नाद, अभिनव अभिनय के अपवाद को छोड़ दें तो संगीत की निर्मिति नाद से हुआ करती है। हवा में या हवा के प्रवाह में कोई भी आघात हुआ तो वह बिखर जाता है, फलतः हवा के कण दूर फेंके जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आवाज या ध्वनि की लहरें पैदा होती हैं और उनसे ध्वनियां पैदा होती हैं। ये लहरें जितनी जोरदार होंगी ध्वनि निर्मिति भी उतनी ही सशक्त होगी। ध्वनियों की कंपन संख्या नियमित या अनियमित हो सकती है। अनियमित कंपन संख्या से जो ध्वनियां पैदा होती हैं वे श्रवणीय या मधुर नहीं होती। आवाज या ध्वनियां मधुर होने के लिए हवा में होने वाले आघात, स्पंदनात्मक, कंपनात्मक, थर्राने वाले और नियमित स्वरूप के होने चाहिए। ऐसी नियमित कंपनात्मक स्वरूप की ध्वनियों को हम नाद कहते हैं, जो स्वरमय एवं मधुर होते हैं। मजबूत तनी हुई रस्सी, तांबा, पीतल, फौलाद या अन्य धातुओं के तारों को तानने के बाद उन्हें छोड़ दें तो हवा में नियमित कंपन पैदा होकर नाद निर्माण होते हैं। घंटा, बर्तन, करताल आदि पर धातुओं से आघात करने पर भी ध्वनि पैदा होती है। इसी प्रकार सुदृढ़ तने हुए पतले चमड़े पर आघात करने पर आवाज निकलती है, ध्वनि पैदा होती है। शंख फूंकने से ध्वनि पैदा हो सकती है। इनमें से बहुत सी ध्वनियां अनियमित स्वरूप की होती हैं। तने हुए चमड़े से निकलने वाली ध्वनि को स्वरमय बनाने के लिए उस चमड़े पर विशेष प्रक्रिया से स्याही लगाने पर उस पर के कंपन भी नियमित होते हैं। पृष्ठ संख्या दो, संगीत के नाद के तीन वैशिष्ट्यों की अनुभूति हमें होती है। पहला वैशिष्ट्य है नाद का छोटा बड़ापन, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यह छोटा बड़ापन नाद निर्माण करने वाली कंपन क्रिया की लंबाई की दूरी पर निर्भर होता है। कंपन क्रिया जितने छोटे आकार की होगी उतना ही नाद छोटा होगा। कलाकार नाद के इस छोटे बड़ेपन का अपनी कला के प्रस्तुतिकरण में आवश्यक परिणाम साधने के लिए यथोचित प्रयोग किया करता है। नाजुक भावना, कोमल सुर, तबले पर के मृदु अक्षर आदि के लिए छोटा नाद प्रभावी सिद्ध होता है। आज की इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं की दुनिया में उत्कृष्ट माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर की मदद से नाद के छोटे बड़ेपन को अत्यंत प्रभावात्मकता के साथ व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा वैशिष्ट्य है उसकी उच्च नीचता, नाद की उच्च नीचता उसकी कंपन क्रिया की गति संख्या पर निर्भर होती है। नियत समय में यह कंपन संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ध्वनि के स्वर की ऊंचाई पिच ज्यादा होगी। इस विशेष शक्ति के फलस्वरूप संपूर्ण संगीत की निर्मिति हो सकी। नाद की इस उच्च नीचता की गुणवत्ता के आधार पर संगीतकार 22 श्रुतियों और सप्त स्वर निर्धारित कर सके। नाद की इस शक्ति पर ही संपूर्ण संगीत विश्व विकसित हुआ। तीसरा, नाद का तीसरा वैशिष्ट्य है विशेष जाति या गुण, टिम्बर। नाद का यह जाति गुण टिम्बर क्वालिटी कंपनों के माध्यम से निर्मित लहरों के आकार पर निर्भर होता है। स्वर एक ही हो तो भी अलग अलग वाद्यों से निर्मित एक ही स्वर की जाति भिन्न भिन्न होती है। 4-5 पुरुषों या स्त्रियों ने अगर एक ही स्वर सप्तक में गायन किया तो भी प्रत्येक व्यक्ति के स्वर की, प्रत्येक व्यक्ति की आवाज की जाति और ढब अलग अलग होगी। इस तीसरे वैशिष्ट्य ने भी संगीत कला को समृद्ध बनाने में हाथ बटाया है। कान से सुना जा सके ऐसा नाद पैदा करने के लिए प्रति सेकंड कम से कम 16 नियमित कंपनों की आवश्यकता होती है। संगीत और अन्य शास्त्रों का पारस्परिक संबंध। अब हम संगीत का समाज जीवन और सामाजिक शास्त्रों के पारस्परिक संबंध के विषय में संक्षेप में परिचय प्राप्त कर लेंगे। संगीत और समाज शास्त्र। जिस समाज में शिक्षा का स्तर अच्छा है, आर्थिक समृद्धि और स्थैर्य संतोषजनक है और जहां शासकीय संस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं के सुंदर समन्वय के फलस्वरूप शांति एवं अनुशासन स्थापित है, ऐसे समाज में ललित कलाओं का उदय, विकास और उत्कर्ष हुआ करता है। पृष्ठ संख्या 3। संगीत एक ललित कला है और उसका विकास एवं समृद्धि सामाजिक राजकीय परिस्थिति पर निर्भर होना स्वाभाविक ही है। वस्तुतः कला की निर्मिति के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है ही, सो बात नहीं। अनेक महान कलाकारों की प्रतिभा उनकी दरिद्रता में भी फूली फली है। हाँ, उस कला के की कदर होने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सुस्थिति की आवश्यकता है। आर्थिक सुस्थिति प्रस्थापित होने मात्र से ललित कलाओं का उत्कर्ष होगा, ऐसी बात नहीं। उसके लिए समाज का सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत होना भी जरूरी है और तभी ललित कलाओं की महत्ता की प्रतीति समाज को होगी और उनका रसास्वादन लेने की क्षमता भी उनमें पैदा होगी। इस प्रकार अगर कला की सराहना होती रहे और उसे प्रोत्साहन प्राप्त हो तो ललित कलाओं का विकास अवश्य होता रहेगा। संगीत और साहित्य। साहित्य और संगीत दोनों ललित कलाएं हैं और उनका पारस्परिक अटूट संबंध है। जिस समाज में साहित्य का गौरव होता है वहां संगीत भी गौरव प्राप्त करता है। समाज साहित्य में प्रतिबिंबित होता है और साहित्य का विशिष्ट काव्य कंठ संगीत का एक घटक है। जिस प्रकार वृत्त एवं छंद काव्य का अविभाज्य एवं महत्वपूर्ण भाग होता है, उसी प्रकार वह संगीत का भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है। संगीत और विज्ञान। यह सच है कि संगीत एक कला है, किंतु प्रत्येक कला का एक विशिष्ट शास्त्र भी हुआ करता है। संगीत की स्वर कल्पना जितनी, संगीत का उतना ही ध्वनि शास्त्र का भी महत्वपूर्ण विषय है। ध्वनि निर्मिति उसके कारण, संगीत की नाद निर्मिति उसके शास्त्रीय कारण, श्रुति संगीत आदि सब ध्वनि विज्ञान के विषय हैं। उसी प्रकार गति, काल विभाजन, गतियों के विविध गुणित आदि सब जैसे संगीत के विषय हैं, वैसे ही वे गणित विज्ञान के भी विषय हैं। संगीत और अध्यात्म। संगीत का इतिहास बताता है कि अपना प्राचीन संगीत, जो मार्गी संगीत की संज्ञा से पहचाना जाता था, उसका उद्देश्य था आध्यात्मिक उन्नति एवं ईश्वर प्राप्ति। मुगलों के काल तक संगीत का उपयोग प्रमुखतया ईश्वर का चिंतन, भक्ति, स्तुति, लीला वर्णन आदि के लिए हुआ करता था, किंतु आगे चलकर संगीत कला के राजा महाराजाओं के आश्रय में चले जाने के बाद मनोरंजन की ही संगीत का उद्देश्य बन गया। पृष्ठ संख्या 4, संगीत और इतिहास। संगीत की परंपरा एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का सही परिचय प्राप्त करने के लिए समाज के इतिहास और उसकी परंपरा का अध्ययन करना आवश्यक होता है। राजकीय इतिहास के साथ ही सांस्कृतिक इतिहास का भी अध्ययन करने से हमें तत्कालीन परिस्थिति एवं संगीत कला के विकास के आलेख का सही बोध हो सकता है। इस सबके लिए समाज शास्त्र, विज्ञान, अध्यात्म, इतिहास, साहित्य एवं गणित इत्यादि शास्त्रों के संबंधित भागों का अध्ययन करने से संगीत विषय की व्याप्ति, उसकी परंपरा इत्यादि का अर्थबोध एवं स्पष्टीकरण संभव होता है। उसके लिए उन विषयों के आवश्यक भागों का अध्ययन करना संगीत के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। ताल वाद्य और ताल वादन का विकास। संगीत कला के विकास और उसकी प्रगति की यात्रा के साथ ताल वाद्य और ताल वादन के विकास और उसके स्थान्तरों की भी यात्रा संपन्न होती आई है। मार्गी संगीत के लिए मार्गी ताल पैदा हुए थे, आगे चलकर देशी संगीत के लिए देशी तालों की निर्मिति हुई। पहले ताल हस्त क्रिया से व्यक्त हुआ करते थे। गायन और वादन में ताल का चलन दिखाने के लिए एक अलग मनुष्य सशब्द और निःशब्द क्रियाओं के जरिए ताल दर्शन कराता था। आगे चलकर ताल को ताल वाद्य पर प्रस्तुत किए जाने की पद्धति आरंभ हुई। परिणामतः विविध तालों के ठेके निर्माण हुए। ध्रुपद धमार गायकी के लिए पखावज वाद्य को उपयोग में लाया जाने लगा। फलतः ताल के पखावजी ठेके निर्माण हुए। ख्याल, टप्पा, ठुमरी, दादरा इत्यादि गायन प्रकारों की सात संगत के लिए पखावज के बदलते तबला वाद्य को चुना जाने लगा। परिणामतः तबले पर ताल व्यक्त करने वाले ठेके पैदा हुए। तबला पखावज पर बजाए जाने वाले ठेके और उनके लिए निर्धारित अक्षरों के नियम भी निश्चित किए गए। रस निर्मिति के लिए, चमत्कृति पैदा करने के लिए और गायनानुरूप सात संगत करने के उद्देश्य से के फलस्वरूप ठेका भरी संकल्पना विकसित हुई। ठेका भरी के विविध प्रयोगों के जरिए मुखड़ा, मोहरा, टुकड़ा, पेशकार, रेला, कायदा इत्यादि रचना प्रकार निर्माण हुए। तबला वादन एक प्रयोगशील कला होने से ऊपर वर्णित विविध वादन प्रकारों के लिए विभिन्न प्रकार के निकास का तंत्र विकसित हुआ और उसी के फलस्वरूप विविध बाज पैदा हुए। पृष्ठ संख्या 5, इन बाजों विविध शैलियों को शिष्य परंपरा प्राप्त होने से अलग अलग घराने पैदा हुए। इन घरानों की वादन शैलियों शैलियाँ तो अलग अलग हैं ही, किंतु उनकी विचार शैलियाँ भी भिन्न भिन्न हैं। इस बात की प्रतीति हमें इन्हें सूक्ष्मता से देखने पर होती है। विभिन्न वादन शैली परंपराओं के बड़े कलाकार उनकी अलग अलग वादन शैली की प्रभावात्मकता के कारण श्रोताओं को पसंद आने लगे और आगे चलकर वे वादन शैलियां संगीत जगत में जड़ पकड़कर पूरी तरह दृढ़ हो गई। तबला वादन कला है या शास्त्र? संगीत जिस प्रकार कला है वैसे ही वह शास्त्र भी है। संगीत संगीत कला एवं गांधर्व विद्या का मेल है। संगीत कला का प्रमुख अंग तबला वादन है। तबला वादन कला कैसे और उनका उसका शास्त्र यानी क्या, यह सब जानने के लिए पहले हम कला और शास्त्र की संकल्पना में क्या फर्क है सो देखें। कला शास्त्र। कला भावना और आत्म प्रेरणा से संबद्ध होती है। शास्त्र मात्र बुद्धि और मन से संबंधित होती है। कला संयोग रूप होती है और एकात्मकता का दर्शन कराती है। शास्त्र बौद्धिक विश्लेषण करता है, फलतः वह तर्क संगति और व्याख्या में रस लेता है। कला व्यक्तिनिष्ठ होती है, शास्त्र वस्तुनिष्ठ होता है। कला कलाकार सापेक्ष होती है तथा उसके प्रस्तुतिकरण में नवनिर्मिति, विस्तार और असलियत के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है। शास्त्र व्यक्ति निरपेक्ष होता है, सौंदर्य निर्मिति और आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति कला का उद्देश्य और उसकी आत्मा होती है। एवं शास्त्र सौंदर्य यानि क्या, इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न शास्त्र करता है। साथ ही शास्त्र नवनिर्मिति के सूत्रों का कारणों का अन्वेषण किया करता है। प्रयोग जीवी कला में जो प्रस्तुतिकरण होता है उसका रूप, उस रूप में पैदा हुआ साहित्य और उस प्रस्तुतिकरण के चलन रीति के विषय में शास्त्र को कुतूहल होता है और उसमें निहित सत्य के तत्व को ढूंढ निकालने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। यही शास्त्र है। कला के शास्त्र का उपयोग और उद्देश्य कला की प्रभावात्मकता को बढ़ाना ही होता है। यह शास्त्र निरा शास्त्र नहीं है रहता। जिस शास्त्र के ज्ञान का उपयोग कला के प्रस्तुतिकरण के लिए किसी भी रूप में नहीं होता उसे निरुपयोगी ही मानना चाहिए। शास्त्र भूमिति जैसा शास्त्र एक स्वतंत्र विषय है और उसका अध्ययन अध्ययन के लिए ही होता है। कला जैसे अन्य विषयों की सहायता करना उसका उद्देश्य नहीं होता। ऊपर वर्णित शास्त्र और कला की संकल्पनाओं के स्थूल अध्ययन के सहारे अब हम तबला वादन कला कैसे और तबला वादन शास्त्र यानी क्या, यह जान लेने का भी प्रयत्न करेंगे। पृष्ठ संख्या 6। गायन कला का विचार करते समय हम स्थूल रूप में कहते हैं कि गायन में ताल और लय ही शास्त्र है, किंतु यह विधान केवल अर्थ अर्ध सत्य है, क्योंकि प्रत्यक्षतः लय ठेका तबले के विविध स्वरमय एवं बंद अक्षर आदि सब गायन के स्वरों एवं शब्दों के समकक्ष विविध भावनाएं निर्माण करने या उत्तेजित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान किया करते हैं। पृष्ठ संख्या 7। लयों की विविध गतियों एवं सुनियोजित शब्दों के विविध नादों के जरिए शांत करुण श्रृंगार वीर, भक्ति आदि रसों की निर्मिति में सहायता मिलती है। इसीलिए यह लय, ताल, ठेका और तबला वादन ये सब कला ही सिद्ध होते हैं। रस निर्मिति के इस गुण के कारण तबला वादन भावना उत्तेजित करने में सहायता पहुंचाता है। किंतु केवल इसीलिए तबला वादन कला है सो बात नहीं। कला का दूसरा एक महत्वपूर्ण निकष है सौंदर्यपूर्ण निर्मिति। इस निकष से देखने पर भी यह बात सहजतया हमारे ध्यान में आती है कि तबला वादन एक प्रयोगशील ललित कला है। विविध कलात्मक दृष्टिकोणों से विभिन्न आकार एवं भिन्न भिन्न रंगों की संबद्ध रचनाओं की निर्मिति करने वाली चित्रकला बुद्धि और मन को प्यारी लगती है। इन रचनाओं का सौंदर्य स्वतंत्र रूप में मानवीय मन को आकर्षित करता है। इस प्रकार की रचनाओं में भावना को विशेष स्थान नहीं होता, तो भी यह माना जाता है कि वह सौंदर्याकृति एक कला है। चित्रकला की ही तरह तबला वादन भी एक प्रयोगशील कला है और इस कला में भी मानव की बुद्धि और मन को विशेष तौर पर आकर्षित किया जाता है। संगीत के प्रस्तुतीकरण के दौरान विविध नाद निर्मिति के जरिए शब्द, अक्षर, भाषा के द्वारा विभिन्न लयों में संबद्ध और अन्य अलग अलग आकार की रचनाएं या आकृतियां निर्माण की जाती हैं और उसमें निहित सौंदर्य बुद्धि और मन को भाता है। इस वादन में भावना को स्थान हो या न हो, किंतु वह कला ही है। प्रोफेसर अरुण कुमार सेन कहते हैं, उच्चांग संगीत की रसानुभूति के लिए केवल हृदय पक्ष का ही नहीं बल्कि बुद्धि पक्ष का भी पूर्ण विकास अपेक्षित है। उच्चांग कला कृतियों में हृदय तथा भाव पक्ष का विकसित बुद्धि पक्ष के साथ अविच्छेद्य समन्वय होता है एवं इन प्रयोगों से रसानुभूति में कोई बाधा नहीं पहुंचती। इन रचनाओं का कलात्मक सौंदर्य कभी उनकी गति में तो कभी विश्राम में, कभी काव्यमय भाषा में तो कभी नाद मधुर निकास में, कभी आकृति बंध में तो कभी गणित में और कभी विस्तार में तो कभी पुनरावृत्ति में छिपा रहता है। गायन कला के प्रस्तुतीकरण के लिए विविध राग, उस राग की बंदिशें, उसके आरोह अवरोह, वादी संवादी, चलन, स्वरों की श्रुति कल्पना, विविध रागों में निहित कोमल स्वरों की सूक्ष्म भेद इत्यादि बातों का विश्लेषण करने वाला विवेचन, विविध बंधन या नियम आदि सब गायन कला संबंधी शास्त्र है। इसी तरह गायन कला जिस तालाकार रचना में निबद्ध करके प्रस्तुत की जाती है, उस ताल की आकृति का वर्णन उसे व्यक्त करने के लिए निर्धारित किए गए हस्तक्रिया, विषय, नियम, ताल के 10 प्राण आदि सब ताल विषयक शास्त्र हैं। पृष्ठ संख्या 8। गूंजयुक्त स्वरमय प्रभावकारी ठेका बजाना कला है। उसी प्रकार विविध तालों में बंधी हुई रचनाओं का कलात्मक एवं प्रभावकारक प्रस्तुतीकरण तबला वादन कला का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पेशकार, कायदा, रेला, लग्गी, लड़ी इत्यादि रचनाओं का वजनदार और स्वरमय शैली में प्रस्तुतीकरण करना ही एक कला है। इन रचनाओं के प्रस्तुतीकरण में और मुख्यतः उनके विस्तार में असली कला प्रदर्शन के लिए गुंजाइश होती है, किंतु इन रचनाओं की गढ़न के नियम, उनकी व्याख्याएं, उनका विस्तार करने के नियम, घराने का शिक्षा विषयक अनुशासन और विस्तार के सूत्र आदि सब विस्तारक्षम रचना विषयक शास्त्र है। कल्पनापूर्ण अथवा विस्तारक्षम रचनाओं की अलंकारिक काव्यमय भाषा और उन रचनाओं का नाद मधुर वादन कला है। विविध जातिबद्ध वादन अथवा विविध लयकारियों का प्रयोग अगर समर्थ एवं नाद मधुर भाषा में किया जाता तो वह कला होती है, किंतु अगर अत्यंत सामान्य गद्यमय भाषा में केवल गणित अथवा हिसाब व्यक्त करने वाला तबला वादन किया जाए तो ऐसे वादन को शास्त्र ही माना जाएगा। तबले के शब्द साहित्य के सौंदर्य तत्वों का अध्ययन तबला वादन का सौंदर्य शास्त्र है। विविध रचनाओं में अंतर्भूत गणित लयकारियों और तिहाइयों के विचारों का अध्ययन शास्त्र है। इस प्रकार तबला वादन के विविध अंगों में शास्त्र याने क्या और उस संदर्भ में कला याने क्या, इसका ज्ञान और प्रतीति प्रत्येक विद्यार्थी में पैदा होना और पक्केपन के साथ दृढ़ होना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र के अध्ययन के द्वारा प्राप्त ज्ञान अगर कला के प्रस्तुतीकरण में उपयोग में लाया गया तो कला की प्रभावात्मकता निश्चय ही बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तबला वादन की कला एवं उसका शास्त्र, उनके पारस्परिक संबंध, उनके बीच का फर्क आदि की जानकारी के लिए साथ के तख्ते का अध्ययन किया जाए। पृष्ठ संख्या 10। तबला वाद्य की निर्मिति। तबले की निर्मिति के विषय में पंडित अरविंद मुलगांवकर, डॉक्टर आबान मिस्त्री और अन्य लेखकों ने अपनी पुस्तकों में अत्यंत मौल्यवान जानकारी दे दी है। उस जानकारी को संकलित रूप में यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न लेखकों के द्वारा दी गई उक्त जानकारी से संबंधित कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं। 1. तबला वादन के निश्चित जनक के बारे में कोई भी अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। 2. अनेक शोधकर्ता और ज्ञानी कलाकारों की राय में तबले का जनक संभवतः अमीर खुसरो रहा होगा, तो कुछ शोधकर्ताओं के दृष्टि से तबला वाद्य निश्चय ही अमीर खुसरो का निर्माण किया हुआ नहीं है। 3. डॉक्टर आबान मिस्त्री ने कार्ला लोनावाल महाराष्ट्र की भाजे नामक गुफा में पाए जाने वाले एक भित्ति शिल्प का प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिसमें एक स्त्री को तबला जैसे दो बर्तनों का वाद्य बजाते हुए दर्शाया गया है। यह भित्ति शिल्प संभवतः 2000 वर्ष पुराना है। 4. पंडित मुलगांवकर की राय में 18वीं शती का खुसरो खां नामक पखावजी संभवतः तबले का जनक हो। आशा है भविष्य में शोध कार्य की प्रवृत्ति रखने वाला एकाध अध्येता इस संदर्भ में शोध द्वारा सत्य को सिद्ध करेगा। इस संदर्भ में मैं अपने विचार अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहूँगा। 1. दो बर्तन वाले तालवाद्य भारत में 2000 वर्ष पहले प्रचार में थे। महाराष्ट्र के संबल, चौघड़ा, छोटा नगारा और उत्तर हिंदुस्तान तथा पंजाब का दुक्कड़ आदि वाद्य दो बर्तनों वाले थे। इनमें से दुक्कड़ वाद्य हाथ से बजाया जाता था। यह वाद्य बहुधा लोक संगीत और सुगम संगीत के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। 2. भारतीय शास्त्रीय संगीत की सात संगत के लिए मृदंग वाद्य हजारों वर्ष पहले प्रचलित थे और आज भी हैं। 3. परिवर्तन क्रांति और उत्क्रांति के रूप में हुआ करता है। मैं यकीनन कहता हूँ कि तबले का जन्म और तबला वादन का विकास क्रांति के नहीं उत्क्रांति के रूप में हुआ है। 4. वर्तमान शास्त्रीय संगीत के काम आने वाला तबला वाद्य ख्याल गायकी और उपशास्त्रीय पद्धति की गायकी में मांग के रूप में व्यवहार में आया होगा। पृष्ठ संख्या 11। दुक्कड़ या ऐसे ही दो बर्तनों वाले अन्य वाद्यों का कलाकारों ने अपनी आजीविका के लिए उपयोग किया होगा। उसके लिए उन्होंने पखावज की तालीम भी ली होगी। संभवतः ऐसा भी हुआ होगा कि पखावज बजाने वाले कलाकारों पर अपने गुजारे के लिए दुक्कड़ जैसे दो बर्तनों वाले वाद्य बजाने की नौबत आ गई होगी। किंतु इस बात निश्चित है कि पखावज वादक कुछ काल तक दुक्कड़ जैसा वाद्य भी बजाया करते होंगे। पांचवा महत्वपूर्ण मुद्दा यह कि इन वाद्यों में स्याही लगाकर उन्हें सुरीला बनाने की पद्धति जब शुरू हुई वह जमाना संभवतः ख्याल गायकी की निर्मिति के आसपास का रहा होगा। मोहम्मद शाह रंगीले ने 18वीं शती के पूर्वार्ध में ख्याल गायकी को प्रचलित करके लोकप्रिय बनाया। ऊपर उल्लिखित वाद्यों के लिए पखावज का खुला बाज पोषक नहीं है, सो जानकर कोमल ध्वनि निर्मिति करने वाला और किनार की गूंज पैदा करने वाला तबला वाद्य दुक्कड़ जैसे वाद्यों में से विकसित हुआ होगा और उसे बजाने के लिए निश्चय ही पखावज वादकों का उपयोग किया जाता होगा, क्योंकि वे ताल एवं लय शास्त्र में बड़े माहिर थे और ख्याल गायकी के प्रस्तुतिकरण के लिए जो तबला अपेक्षित था उसके लिए वही ताल लय के शास्त्र जितना ही आवश्यक था। छठवां वादन के दृष्टिकोण से पखावज निसंदेह तबले का जनक है। तबले के लिए जो प्राथमिक वर्ण एवं भाषा विकसित हुई है उसका उद्गम पखावज की भाषा में ही निहित है। धा ता दी किट तिरकिट क्रधा आदि सब महत्वपूर्ण अक्षर तबले को पखावज की ओर से विरासत में के रूप में प्राप्त हुए हैं। जो बदला है वह है उन अक्षरों का निकास और शुरू में वह आवश्यकता के तौर पर ख्याल गायन के अनुरूप सात संगत के लिए बदल दिया गया होगा। संक्षेप में सुयोग्य सात संगत के लिए पखावज शैली के निकास में परिवर्तन करना प्राथमिक आवश्यकता थी, किंतु पखावज से अलग शैली निर्माण की जाए, उसके निकास का स्वतंत्र तंत्र हो और इस तंत्र की सहायता से स्वतंत्र शैली का वादन प्रस्तुत किया जाए, यह विचार शायद वादक का है। दिल्ली घराने के उस्ताद सिद्धार्थ खां जैसे महान प्रतिभाशाली कलाकार के लिए वह एक आह्वान ही था। इसी के फलस्वरूप दिल्ली का बाज के नाम से प्रसिद्ध शैली की निर्मिति एवं विकास हुआ। सातवां तबला वाद्य अमीर खुसरू का बनाया हुआ नहीं है। उसी प्रकार वह उस्ताद सिद्धार्थ खां का नाम भी का भी निर्माण किया हुआ नहीं है। यह वाद्य अविकसित अवस्था में प्रथमतः लोक संगीत सुगम संगीत आदि के लिए उपयोग में लाया जाया होगा। उस्ताद सिद्धार्थ खां डाढ़ी ने शास्त्रीय तबला वादन के लिए अर्थात उस वाद्य के निकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए होंगे। पृष्ठ संख्या 12 घराने की वंशावली का अध्ययन करने पर यह बात ध्यान में आती है कि 18वीं शती के आरंभ में ये घराने पैदा हुए हैं और ख्याल गायकी भी 18वीं शती के पूर्वार्ध में निर्माण हुई। नौवां आजीविका के लिए कुछ पखावज वादक संभवतः दुक्कड़ वाद्य भी बजाते होंगे। दसवां इन वाद्यों को शास्त्रीय सुरीले वाद्य में रूपांतरित करने की आवश्यकता शायद ख्याल गायकी के कारण निर्माण हुई होगी और उनकी रचनाओं में परिवर्तन करके प्रायः पखावज वादकों ने ख्याल गायकी के लिए यह वाद्य बजाना शुरू किया होगा। इस शैली का जनक संभवतः खुसरू खां 18वीं शती रहा होगा। इस सुधारित वाद्य को तबला नाम प्राप्त हुआ सो कैसे, इस संबंध में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। 11वां, स्वतंत्र तबला वादन की प्रभावात्मकता के लिए पखावज से अलग शैली पैदा करने की ध्येया शक्ति के परिणाम स्वरूप उस्ताद सिद्धार्थ खान ने स्वतंत्र वादन शैली का निर्माण किया। इसलिए लगता है कि स्वतंत्र तबला वादन के जनक का सम्मान भी उस्ताद सिद्धार्थ खां को ही मिलना चाहिए, किंतु सिद्धार्थ खां को तबला वाद्य के जनक के रूप में मानना तर्कशास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं जचता।